एक मौके पे हजरत उमर फारूक को किसी ने कह दिया, या उमर इत्तकिल्ला, ए उमर अल्लाह से डर जा। कांपने लग गए कि इतनी बड़ी हस्ती का तूने मुझे ख्याल दिला दिया। फिर इसी तरह आप देखिए कि उसी का खौफ, अल्लाह का खौफ, लोगों का नहीं। मुझसे डरो, लोगों से ना डरो। खाफो नी वला तखाफो हम, अल्लाह का डर बंदों के डर से बेनियाज कर देता है। फिर इसी तरह उसी की रग़बत थी, यदू न रब हम रगब व रहबा। जबकि इनके यहाँ नफिल नमाजों और रोज़ों वगैरह में ज़्यादा तशद्दुद ना था, बल्कि ज़ाहरी नवाफिल में तो बाज़ ताबईन भी इससे ज़्यादा तशद्दुद बरतते थे। यानी सहाबा के नफिल कोई 100-100 तस्बियाँ और 200-200 रखते नहीं होती थी, नॉर्मल नवाफिल थे वही जो कि मसनून है। बाद वालों ने बल्कि ज़्यादा नवाफिल अदा किए, क्योंकि ये काम वाले लोग थे, तो जब काम से ज़रा सी नज़रें हटी तो बैठ के फिर नवाफिल और ज़ाहरी इबादत रह जाती हैं। खैर, और अल्लाह उन्हीं के बारे में कहते हैं कि अलीम अल्लाह, अल्लाह ने जान लिया जो कुछ उनके दिलों में था। इनके दिलों में जो कुछ था अल्लाह ने जान लिया। तीन चीज़ें यानी नवाफिल और उनकी ज़ात। चौथी चीज़ लीजिए, चौथी चीज़ दुनिया और इसकी मता से बेजारी। कम से कम ताल्लुक और इसकी सजावट और आराइशों से एराज था। आलाइशें ज़िंदगी से दूरी ने इनको राहत, सआदत, तमानियत और सकीनत बख्शी थी। और दलील मौजूद है, जो शख्स ईमान के साथ आखरत को चाहे और इसके लिए कोशिश करे तो ऐसे ही लोग कामयाब हैं। तो फिर चौथी चीज़ आपकी मेरी लिस्ट में क्या आ गई कि दुनिया के माल से खुद को ज़रा सा दूर रखना। पांचवी चीज़ लीजिए, वो ये थी कि इनके हाँ दूसरे आमाले साले पर जिहाद को गलबा हासिल था। इसको नोट कीजिए, ये है वो भूला हुआ सबक जो इस वक्त उम्मत को पढ़ने और सुनने और समझने की ज़रूरत है अपने अमल की खातिर। हत्ता कि जिहाद इनका शुआर, इनकी पहचान और अलामत बन गया। जिहाद के ज़रिए ही उन्होंने अपने तफक्कुरात, हमूमो अहज़ान, तफक्कुरात तफक्कुर की जमा, तफक्कुरात या तफक्करतुन की जमा कह लें, फिक्र अंदेशे, हमूम हम से है और अहज़ान हुज़न से है। यानी जिसको हर वक़्त एक ही धुन जारी है कि जिहाद बिल कुरान करना है। वजाहिदुम बिही जिहादन कबीरा, सूरत फुरकान में अल्लाह ने आयत 52 में जो कह दिया। तो ये तो जिहाद का वो दर्जा है ना कि जिसमें इल्मी जिहाद है, सीखना है, सिखाना है, पढ़ाना है, स्कूल खोलना है, खाने का इंतज़ाम करना है। तो इन चीज़ों में पढ़कर बंदे को अपने ज़ाती गम याद कहाँ रहते हैं। और अगर इसी जिहाद को फिर जिहाद बिसैफ पे ले आइए, तलवार के साथ जिहाद, तो फिर आप खुद ही देख सकते हैं उसमें कितनी शिद्दत आ जाती है। तो क्या पता चला कि जब जिहाद दिल दिमाग पे होता है ना, फिर ज़ाती गम बंदे को ज़्यादा नहीं सताते। क्योंकि जिहाद बयक वक्त, यानी जिहाद की इतनी खूबी की है क्योंकि एक ही वक्त में जिहाद जिक्र, अमल, इन्फाक और हरकत सभी कुछ है। अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने वाला सबसे बड़ा खुश नसीब और सबसे ज़्यादा मुतमईन और पाकीज़ा नफ्स वाला होता है। ये बात अगर आज उम्मत समझ जाए ना तो दिन बदल जाए। आज जमूद है, आज सिर्फ इबादत के खौल में या वज़ाइफ के चक्रों में है या सोवान जो अल्लाह जानता है। ये जिहाद करने वाले आज बहुत थोड़े हैं। मुश्किल लगता है, अब घर से क्लास लेनी आसान लगती है, बाहर जाके मुश्किल लगेगी तो फिर छोड़ देंगे, फिर कोई ज़रूरत नहीं ऑन साइट पे काम करने की। और अल्लाह ताला फरमाते हैं, जो लोग हमारे रास्ते में जिहाद करते हैं हम इन्हें अपने रास्ते की हिदायत देते हैं, बिला शुबा अल्लाह नेकुकारों के साथ है। अल्लाह हमें ऐसे ही लोगों में शामिल कर ले। कुरान करीम ऐसे हकायक यानी हकीकतों और सुनने हयात, सुनन कहते हैं तरीके, हयात ज़िंदगी यानी ज़िंदगी गुजारने के तरीकों का गंजीना है। गंजीना कहते हैं ख़जाने को, वो लोग कहते हैं ना गंज बख्श, ख़जाने देने वाला, वही लफ्ज़ है। जिन्हें ना ज़वाल है ना तब्दीली, इंसान की खुश नसीबी और इत्मीनान कल्ब से जो हकायक जुड़े हैं यहाँ इनका जिक्र करते हैं। यानी अब आप देखिए कि ये इतना खूबसूरत मौजू, जब से ये टॉपिक शुरू हुआ है मैं सोच रही हूँ कि इसको अलग से कट डाउन करके, ख़ास तौर पर ये सहाबा के जो पांच अमल हमने पढ़े हैं, अलग से इसको शेयर कर दीजिए दुनिया के साथ। आज हमारा गम ही ये है, ज़ाती गम। किसी को भी तो लगे हैं ना, मान लीजिए, यानी कभी भी किसी के गम की बात करो ना तो सर कहते हैं दावत जो नहीं देते। जो लोग दीन की दावत देना और दावा करना छोड़ देते हैं, फिर उसको अल्लाह किसी ना किसी गम में डालता है। ये बात बिल्कुल सच है। तब यहाँ हम कुछ ऐसी आदतें जो साबित शुदा है, यानी जो यूनिवर्सल ट्रूथ्स हैं, बस उसकी बात ले लीजिए। पहली चीज़ क्या है कि जो अल्लाह से मदद चाहेगा अल्लाह उसकी मदद करेगा। फिर अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे तो वो तुम्हारी मदद करेगा और तुम्हें साबित कदमी अता करेगा। जिससे मांगेगा वो देगा, मुझे पुकारो मैं तुम्हारी पुकार सुनूंगा। जिससे मगफरत चाहेगा अल्लाह तआला इसे माफ़ कर देगा। बार इलाह मुझे माफ़ फरमा तो इसने इसे बख्श दिया, ये भी आयत है। जो इससे तौबा करेगा इसकी तौबा कबूल करेगा। और एक जगह आता है, वही है जो अपने बंदों की तौबा कबूल करता है। जिस पर भरोसा करेगा वो इसके लिए काफ़ी हो जाएगा। जो अल्लाह पर तवक्कुल करेगा तो इसके लिए वो काफ़ी होगा। तीन चीज़ें ऐसी हैं कि इनका बदला और सज़ा अल्लाह जल्द ही देता है। उसमें एक चीज़ है बगावत व उदवान, जैसा कि फरमाया कि इन्नमा बख्शुकुम अला अन्फुसिकुम, तुम्हारी बगावत तुम्हारे ही खिलाफ पड़ेगी। दूसरी है अहद की खिलाफ वर्जी, फरमाया जो शख्स अहद तोड़ता है वो अपने ही खिलाफ करता है। तीसरी चीज़ है मकरो फरेब, क्योंकि बुरा मकर मकारों ही को घेर लेता है, यानी जो किसी के लिए कड़ा खोता है वो उसी में गिर जाता है। जालिम अल्लाह के कब्जे से भागकर कहीं नहीं जा सकता। फरमा इनके घर देखो, इनके जुल्म की वजह से उंधे मुंह पड़े हैं, पिछली कौमों की तरफ इशारा है। तो याद रखिए कि अमल सालेह का नतीजा जल्द भी मिलता है, देर में भी, क्योंकि अल्लाह ताला माफ़ फरमाने वाला और शुक्र कबूल करने वाला है। तो अल्लाह ने इनको दुनिया का सवाब और आखरत का अच्छा इंजाम अनायत किया। जो लोग अल्लाह की इताअत करते हैं वो इनसे मोहब्बत रखता है। अल्लाह फरमाता है कि तुम मेरी तबाह करो अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा। जब बंदे को ये मालूम हो जाता है तो वो खुश होता है, क्योंकि इसका मामला इस रब के साथ है जो रोज़ी देता और नुसरत फरमाता है, अल्लाह ही राजिक है। नुसरत अल्लाह के पास से ही आती है, वही तौबा कबूल करने वाला है, वही तो रब रहीम है। वह अपने दोस्तों के दुश्मनों से इंतकाम लेता है, ये हाईलाइट करें बात, वो अपने दोस्तों के दुश्मनों से इंतकाम लेता है। हम हैं इंतकाम लेने वाले, लिहाजा अल्लाह ताला ही सबसे बड़ा और सबसे बरतर है। और सूरत मरियम में तो अल्लाह ताला पूछते हैं, क्या इसका कोई हम नाम तुम्हें मालूम है? मुराद है कि उस जैसा कोई भी नहीं है। इसी तरह शेख अब्दुर्रहमान बिन सादी, ये वही है जिनकी तफसीर सादी दारुस्सलाम कंपनी ने 3 जिल्दों में छापी और बहुत मुस्तनद तफसीर है। तो इसी राइटर का एक बेहतरीन रिसाला है जिसका नाम है अल वसाइलुल मुफीदतु फी हयातिस सईदतु, यानी खूबसूरत सा टॉपिक है। कहते हैं कि असबाब सआदत, यानी खुशबख्ती के असबाब में से ये है कि बंदा इस बात को देखे कि अल्लाह की इस पर क्या नेमतें हैं। आप में भी देखेंगे बहुत कुछ दिखेगा। वो पाएगा कि वो कितने ही लोगों से लायक है जिन्हें शुमार नहीं किया जा सकता। इस वक्त बंदा ये महसूस करेगा कि अल्लाह का इस पर बड़ा फजल है। मैं समझता हूँ कि आदमी अगर बाजमात नमाज पढ़ रहा है, कुरान पाक की तिलावत और जिक्र अजकार की पाबंदी करता है, तो वो बहुत से लोगों पर दीनी मामलात में भी फायक है। ये एक ऐसी नेमते जलीला है जो अनमोल है, जलील यानी बड़ी। इसने तुम्हारे ऊपर अपनी जाहरी और बातनी नेमत मबजूल फरमाई, यानी कभी कभी हमें जाहरी नेमतें दी जाती हैं और कभी कभी बातनी नेमतें दी जाती हैं। तो क्या पता चला कि आप खुद को हमेशा अल्लाह के फजल में देखा करें। अल्लाह जी इतनी नेमतें, अल्लाह जी सारा ही मुझे दे देना, अल्लाह जी आपने ये भी मुझे दे दिया, इस तरह ना लाड़ किया करें अपने रब से। अल्लाह जी आज फिर आपने इतना कुछ दिया, अल्लाह ताला मैं तो कल भी कुछ नहीं कर सकी थी, अब आज भी मुझे कुछ तौफीक तो दे। जिंदा प्यार जिंदा फूल की तरह खिला हुआ है, कभी मुरझाया हुआ है, कभी खुशबू है, कभी नहीं है। तो आपकी ज़ुबान जिक्र से तर हो और दिल शुक्र से भरा हो, बस आप मुस्तकिल इबादत की हालत में। फ़राइज़ भी कर लेंगे ना तो वो भी काफ़ी हो जाएंगे आपके ऊपर जाने में। इसी तरह से आप देखिए कि इमाम ज़ाहबी हैं, बहुत ही मारूफ इमाम है। उन्होंने मुहद्दिस कबीर इब्ने अब्दुल बाकी के बारे में लिखा कि वो कहते हैं कि उन्होंने बगदाद में जामे दारुस्सलाम से निकलने के बाद जायज़ा लिया तो पाया कि कोई भी ऐसा नहीं था जो ये तमन्ना करता कि वो अपनी जायनमाज पर होता। क्या मतलब है इनकी इस बात में? ईजाब यानी कबूल, ईजाबियत यानी ईजाबी और मनफी दोनों पहलू हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया और इनको अपनी बहुत सी मखलूकात पर नुमाया फौकियत बख्शी। तो क्या पता चला इसमें आपको? मुझे ये पता चला कि या जुल जलाली वाली क्राम का कसरत से विर्द करना असल में अल्लाह ताला को बड़ा मानना और उसके साथ ताल्लुक पैदा करना है। थोड़ा सा दोहराते हैं इन चीज़ों को जो सीखी हैं। कितना बड़ा कलाम है अल्लाह का। आप देखिए, अपनी ज़ुबान को जिक्र से और दुआओं से तरक्या करें, इससे बहुत सारी नेकियां आसान हो जाती हैं। बस अबू दाऊद की रिवायत है 1495 में, एक शख्स नमाज़ पढ़ रहा था, जब फारिग हुआ तो उसने दुआ मांगी, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बियन्न लकल हम्दु ला इलाहा इल्ला अंता अल मन्नानु बदीउस समावाति वल अर्द या ज़ल जलाली वल इकराम या हय्यु या क़य्यूम। ए अल्लाह, मैं तुझसे मांगता हूँ इस वसीले से कि सारी हम तेरे लिए है, तेरे सिवा और कोई माबूद नहीं, तू ही एहसान करने वाला और आसमानों और ज़मीन को पैदा करने वाला है। ए जलाल और अताओ बख्शिश वाले, ए जिंदा जावेद, ए आसमानों और ज़मीनों को थामने वाले। ये सुनकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसने अल्लाह से इसके इस्मे आज़म के हवाले से दुआ मांगी है कि जब इसके हवाले से दुआ मांगी जाती है तो वो दुआ कबूल फरमाता है और सवाल किया जाता है तो वो देता है। तो चलिए इसको लिख के रख लें और पढ़ते रहें। इतने प्यारे कलेमात हैं कि आपका दिल अल्लाह ताला की मोहब्बत से भरेगा। फिर आप देखिए कि इस खूबसूरत से टॉपिक में हमने सहाबा की खूबियाँ देखी, सादगी, और उस्मान गनी का अशरफियों वाला वाक्या सुना। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हो खलीफा होकर भी ज़मीन पर सोते थे। अबू ज़र रज़ी अल्लाह अन्हो का 2 वक्त का खाना जमा करने को पसंद नहीं करते, जो उनकी चॉइस थी, ना वो हराम कहते थे ना मकरूह। आप इसको ऐसे कर दीजिए कि अबू ज़र रज़ी अल्लाह अन्हो अगले वक्त का खाना रखना भी तवक्कुल के ख़िलाफ़ समझते थे। आप और मैं क्या है, कितने दिन का खाना है फ्रिज में? और फिर मज़े की बात है कि आप पकाएं, है ही कुछ नहीं घर में। आज घर में कुछ नहीं था, पहले हम ग्रोसरी लेंगे फिर पकाएंगे, सोचने की बात है। फिर आप देखिए, इल्म प्लस अमल, इल्मो अमल का मजमुआ है असल इल्म। अमल पार्ट ऑफ द इल्म है। खशियत वाला इल्म काम आता है और इल्म के साथ जब अमल होता है तभी इंसान आलिम कहला सकता है। और ये फातह 28 थी कि इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, अल्लाह में ऐसे आलिम तो ज़रूर बनाए। फिर इसी तरह अगली चीज़ हमने देखी कि नवाफिल से ज़्यादा दिल की इसलाह की फ़िक्र और मताउल गुरूर से बेजारी। अबू बकर घर का पूरा और उमर आधा सामान ले आए, आज मैं आप क्या देंगे? हाँ देना होगा ना, पहले सीखेंगे, हाँ दे दो, नया आ रहा है, नया ऑर्डर किया हुआ है, फ्री में ले जाएं चैरिटी वाले। वो और बात है, जब आप अपना देना चाहते हैं ना और लेने वाला कोई नहीं, वो और बात है। और जब तिनका तिनका इस्लाम के लिए मतलूब हो तो फिर देना या ना देना ये और बात है। हम देते भी उस वक्त हैं जब कोई बुरा ख्वाब आ जाए, कोई मुसीबत पड़ गई, बकरा काट दो, अच्छा ये हो गया वो कर दो। वो तो खुशियों में सदके करते, गमों में सदके करते, और वो अपनी जान पे नहीं सिर्फ बोझ उतारते, इस्लाम की ज़रूरत को देखते थे। हमारे पास इतने नेकी के मौके हैं और हम सोचों में पड़े रहते हैं क्या करें, किसको दें। आप देखिए कि मिसाल दूंगी, बात चूँकि बड़ी हसास है तो चाहती आप थोड़े रिलैक्स भी हो जाए। इंसान के पास जो कुछ भी होता है ना, लोग कहते हैं उसके बच्चों का, ये हमारे इंडो पाक कल्चर का एक मारूफ सा ताल्लुक है कि दी और किसके लिए कमाते हैं, अच्छा और किसको दें। बल्कि बाज़ लोग जिनकी औलाद नहीं होती वो कहते हैं क्या करें इस माल का, समझ नहीं आती हमारे बाद क्या होगा। फिर भी नहीं जहन में आता कि अल्लाह के दीन को दें, वो फिर सोचेंगे अच्छा वो बहन के बच्चे को देना है, अच्छा भाई बहनों को उसको, अच्छा नहीं उनसे तो बनी नहीं उनको, हाय हमारा सारा ये ले जाएंगे। फिर भी नहीं ख्याल आता कि अल्लाह ने आपके इस माल की कितनी कीमत लगानी है कल। तो ऐसी मैं सोच रही थी एक दो दिन पहले, कुछ चीज़ें चल रही थी जहन में, तो जैसे मैंने अक्सर नानियों दादियों को और बड़ों को देखा है, अच्छा ये मेरे फलां बच्चे के हैं, अच्छा ये चूड़ियाँ उसकी बेटी को शादी में डाल देना, अच्छा ये मैंने फलां नवासी की नियत से रखा है, ये उसके लिए, ये उसके लिए, ये इसके लिए। अक्सर आम बात है, कोई बड़ी बात भी नहीं है, और कर सकता है कोई अगर अपनी ज़िंदगी में सारा भी दे दे तो कोई बुरी बात नहीं। बात कहते हैं हमारे बात देना, कोई कहता है अच्छा इनकी शादियों की नियत का रखा, कुछ भी। जब आपको समझ आ जाती है ना कि सबसे प्यारी बोली कहाँ लगनी है, तो आप भी यही कुछ करते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है, अच्छा ये मेरी चीज़ फलां प्रोजेक्ट, अच्छा वो प्लॉट जब बिकेगा ये फलां मुल्क के प्रोजेक्ट में, अच्छा वो जो विरसे में चीज़ मिली थी वो जाएगी वो फलां खैर कसीर और सदका जारिया में। यानी इंसान की वो कैफियत जो अपने बच्चों के साथ होती है ना, वो नेकियों के प्रोजेक्ट में ढलती हैं। कुछ चीज़ें हम सब के पास स्टक्ड होती हैं ना, ना बिकती हैं ना काम में आती हैं। कोई प्रॉपर्टी हो सकती है, कोई प्लॉट हो सकता है, कोई ऐसी चीज़ के जो बस हालात के चुंगल में फंस गई और आपको लगता है कि मेरी ज़िंदगी में तो ये कोई नहीं बिकनी। नियत कर दीजिए, मैंने ये चीज़ फलां स्कूल फलां जगह फलां प्रोजेक्ट में डाल दी, जब मेरे बाद बिकेगा ये उधर जाएगा। खाली हाथ मरिए, ना हिसाब ना किताब ना जमा ना तफरीक। अल्लाह के नबी ने उन औरतों से पूछा, माँ बेटी से, इन चूड़ियों या इन कड़ों की ज़कात दी है? कहा नहीं दी। अच्छा देनी पड़ेगी, जब से? अच्छा जब से। ये पकड़े आप रखिए, ये कीजिए आप भी। कंधे हल्के, जमा तफरीकें, डोरियों का वजन, मोतियों का वजन, अच्छा नया सोना पुराना सोना, भाई केयर फ्री रहिए। बच्चे ले जाएं बाद में, या अल्लाह का दीन ले ले आपकी ज़िंदगी में, आपको क्या फ़र्क पड़ता है? अल्लाह ने आपको भी तो दिया ना, तो बच्चों को भी दे देगा। तो याद रखिए, किबले बदलिए, खुश होंगे। जो फिर खुशी मिलने वाली है ना, वो वैसे नहीं मिलती। फिर इसी तरह से आप देखिए, एक और खूबी थी सहाबा की, आमाले सालेहा में मसरूफ रहते थे। अल्लाह अकबर, आप में भी सोचें। आप देखिए कि हम सहाबा कराम की बातें करते हैं ना, और उन्हीं के बारे में ये सब कुछ पढ़ते वक्त यकीनन दिल पे बोझ आता है और इंसान अपने बारे में बहुत सोचता है। सहाबा कराम वो लोग थे जो हर वक्त अमल में मसरूफ थे, और आमाले सालेहा क्या हैं, नतीजा क्या देते हैं? दिल का इत्मीनान, दुनिया का इत्मीनान, आखिरत की कामयाबियाँ, अल्लाह की मोहब्बत, उसकी नुसरत। ज़िंदगी में भी आपकी नेकियाँ आपको खैर ज़रूर देती हैं। इसी तरह आमाले सालेहा में से जिहाद को फौकियत क्यों है? इसलिए कि इसके ज़रिए अल्लाह का दीन नाफिज़ होता है। सहाबा किराम के बारे में किसी ने जो जुमले बोले थे, खूब कुलाफ नाम था उसका, और रात के वक्त लश्कर इस्लाम के कह लीजिए कि गिर्द चक्कर लगाया, पूरे लश्कर में से शहद की मक्खियों की बिन बिनाहट की आवाज़ आई। गौर किया, ज़रा करीब आकर देखा तो सहाबा किराम तहज्जुद में अल्लाह को कुरान सुना रहे थे। वो बिन बिन की आवाज़ें कुरान पढ़ने की थी। वापस गया, अपने लोगों को जमा किया, कहने लगा कि वो अजीब लोग हैं, रुहमानुम बिल लैल व फुरसानुम बिन नहार, दिन के वक्त घोड़ों की पुश्तों पे बैठे हुए शख्स सवार हैं और रातों को अल्लाह के रहब से, अल्लाह की खशियत से रोने वाले हैं। मैं ये नहीं कहता कि इस लश्कर के साथ मेरा सामना हो और हम जीते, मैं ये कहता हूँ कि अल्लाह मुझे कभी इनके सामने ही ना लाए। और अपनी फौज से कहने लगा कि मेरा आपको मशवरा कि इनको इनके हाल पे छोड़कर आगे चले जाए। ये थे सहाबा कराम जिनके लिए ये अच्छी गवाहियाँ मौजूद हैं। और अल्लामा इकबाल की पोइम तो आज भी ऐसे ही नहीं है जैसे कि सूरज चांद सितारों को देखकर आपको नएपन का एहसास होता है, कि ये गाजी ये तेरे पुरसरार बंदे, जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई, दो नीम इनकी ठोकर से सहराओ दरिया, सिमट कर पहाड़ इनकी हैबत से राई, दो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज़ है लज्जत आशनाई। शहादत है मकसूद व मतलूब मोमिन, न माले गनीमत न किश्वर कुशाई। क्या पता चला कि सहाबे कराम वाकई ऐसे थे कि जिस पे इंसान हैरान थे, परेशान थे। तो आपका सवाल कि सहाबे कराम के बारे में ये जो बात थी आखिरी, इसको ज़रा सा देखे। मुहद्दिस कबीर इब्ने अब्दुल बाकी, यानी एक बहुत बड़े मुहद्दिस थे, इनके बारे में इमाम ज़ाहबी की राय क्या है, कि वो क्या कहते हैं कि उन्होंने बगदाद में जामे दारुस्सलाम से निकलने के बाद जायज़ा लिया, यानी बाहर की दुनिया को देखा, जो इल्म की दुनिया से बाहर थी, तो पाया, यानी ही फाउंड इट, क्या कोई भी ऐसा नहीं है जो ये तमन्ना करता, क्या अपनी जायनमाज पर होता, क्या पता चला, यानी लोगों में इबादत का शौक नहीं है। ये देखा उन्होंने अपने मदरसे से, अपने दीनी इदारे से, अपनी जगह से निकलकर। इनकी इस बात में इजाबी और मनफी दोनों पहलू हैं। ये क्या, देखिए पॉजिटिव एंड नेगेटिव। बाहर ऐसे लग रहा है कि तनकीद कर रहे हैं, नेगेटिव बात है, लेकिन देखा जाए तो बात सच है। पता क्या चला कि अल्लाह ताला इल्म की जब दौलत दे तो सब तमल की ख्वाहिश थे। ये है असल में आपके मेरे समझने की बात। फिर इसके बाद देखिए कि अस्मा बिनते उमैस फरमाती हैं कि मुझसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं तुम्हें चंद ऐसे कलिमात ना सिखा दूँ जिन्हें तुम मुसीबत के वक्त कहो? वो ये कि अल्लाह मेरा रब है, मैं इसके साथ किसी को शरीक नहीं करती। एक रिवायत में यूँ है कि जिसे कोई परेशानी, फिक्र, गम, बीमारी या शिद्दत लाहक हो और वो कहे अल्लाह रब्बी ला शरीक लहू, यानी ये जुमले या ये कलिमात दोहराने वाले की मुसीबत ख़त्म कर दी जाएगी। और हमारे एक उस्ताद हैं, उन्होंने एक मौके पे ये बात कही थी, कभी किसी का सामना करना पड़े, मसलन आप देखिए इमिग्रेशन, मसलन राह चलते पुलिस ने रोक लिया, कोई ना कोई इस तरह की इन्वेस्टिगेशन ज़िंदगी में कोई भी हो, यानी जब दिल धक धक कर रहा हो, बल्कि कहीं इंटरव्यू देने गए, कहीं को टेस्ट है, कोई इम्तिहान है, कहते हैं जब दिल हाथ में आ जाता है ना, थक थक थक, तो ये पढ़ा करो दिल में, अल्लाह अल्लाह रब्बी ला उशरिक बिही शैया, अल्लाह तो मेरा रब है और मैं उसका शरीक किसी और को नहीं बनाता। आप करके देखिए, आप मेरी तरफ से इसको अपने किसी अमल पे, किसी दिल के कैफियत पे आजमा के देखिएगा, ऐसे लगता है कि दिल पे किसी ने ठंडक रख दी, घबराहट ख़त्म हो जाती है। बहुत से मामलात होते हैं जो तह बतह तारीखियों की माने आदमी के दिल पर छा जाते हैं। जब अपने रब की तरफ लपकता है, अपना मामला इसके हवाले कर देता है और अपने आप को इसके सामने डाल देता है और मखलूक में से किसी को शरीक नहीं करता, तो इसकी परेशानी दूर हो जाती है। लेकिन इस तरह की दुआएं जो आदमी गफलत भरे और सुस्त दिल से अदा करेगा तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। शायर कहता है कि माल और ताल्लुकात के फौत होने का हमें कोई गम नहीं अगर हमारी रूहें सलामत हैं, यानी चला जाए माल सारा और सब रिश्ते नाते ख़त्म भी हो जाएं, रूह सलामत है तो फिक्र ना कीजिए, माल कमाया जा सकता है, इज्जत भी हासिल हो जाएगी अगर अल्लाह नफूस को हलाकत से बचा ले। क्या पता चला, अगर आपका नफ्स जिंदा है, आप खुद जिंदा है, तो जो भी आज परेशानी तकलीफ़ आई है वो अल्लाह की रहमत से दूर हो जाएगी। तो क्या देखा आपने, मैंने इसमें अपने लिए दुआएं, चंद दुआएं दोहराइए। देखिए दुआ मोमिन का बहुत बड़ा सहारा है। आप उसके लिए अब ख़ास कोई वजीफे का तरीका इख्तियार ना करें, कोई उसमें आप तस्बीह ढूंढने जाएं और गुठलियाँ पकड़ें, ये हर वक्त तो नहीं होती। अपने दिल की धड़कनों से वो काम लीजिए जो लोग तस्बीह के दानों से लेते हैं। कोई परेशानी आए तो क्या करें, मुस्नद अहमद की रिवायत 9254, जिसको कोई ज़रूरत पड़ी और इसने इसको लोगों पर पेश कर दिया तो वह इस चीज़ का ज़्यादा लायक होगा कि इसकी ज़रूरत आसानी से पूरी ना हो। नोट करिए, बहुत बड़ी बात है, आधा शिर्क ख़त्म हो जाए अगर ये हदीस समझ आ गई तो। और जिसने इस हाजत को अल्लाह पर पेश किया तो अल्लाह या तो इसको जल्दी रिस्क दे देगा, यानी जो मांगा वो मिल जाएगा, या फिर ताखीर से आने वाली मौत दे देगा। खुलासा क्या है, अल्लाह के माँ सिवा से नहीं मांगना, उधर से मिलता भी है ना, और अल्लाह नहीं देता फिर भी नहीं लेना, जाओ बाबा जी से लेना, मैं नहीं लेता, ये तुम्हारे बुजुर्ग ही मुझे औलाद दे सकते हैं तो मुझे नहीं चाहिए ऐसी औलाद, ये मुराद है। तो क्या पता चला, रजू अल्लाह, तवक्कुल अल्लाह, मखलूक को शरीक ना करना, सच्चे दिल से दुआ करना, ये काम कीजिए परेशानियों के वक्त। और अभी जिस दुआ का तذکرہ था उसका अरबिक टेक्स्ट भी ले लीजिए, मेरी फेवरेट दुआ में से एक दुआ, और इस पे भी हमारे उस्तादों में से किसी ने कहा था कि कभी ज़िंदगी में इंसान ऐसे दोराहे पे खड़ा हो जाता है, कुछ समझ नहीं आता, क्या मांगू क्या ना मांगू, किधर जाऊँ, यानी वही बात है कि इन नीली मांजल तैलई यमिन खैर इन फ़कीर। कभी कभी जब बहुत सारी हाजतें हों, क्या पहले क्या बाद, तो बंदा कह दे कि जो भी देगा मुझे चाहिए, जैसे मूसा को मदियन में सभी कुछ तो चाहिए था, तभी की ये दुआ है, आप पढ़ लें कुरान में सूरह कसस में कि अल्लाह मुझे तो इन नीली मांजल तैलई यमिन खैर इन फ़कीर, हर खैर ही चाहिए। और इस दुआ की कबूलियत देखिए, रोटी कपड़ा मकान शादी बीवी सब मिल गया। तो ये दुआ जब आपको बहुत तकलीफ़ हो, और वो कहते हैं ना कि तवील अरसे से आप एक ही हालात में हैं, यंग बच्ची है तो शादी नहीं हो रही, शादी हुई तो बच्चे नहीं हो रहे, मियाँ है कोई मर्द है तो जॉब ही नहीं मिल रही। कभी कभी तकलीफ लंबी होती दिखती है ना, और जिसको लोग कहते हैं कि सब्र टूटता दिखे, तो ये दुआ मांगे। अब ये तो मैंने आपसे कही है ना, अल्लाह के नबी से ये दुआ आप जब देखेंगे, ये गम और परेशानियों की दुआ है। मुस्नद अहमद की रिवायत है 5576, अल्लाहुम्मा इन्नी आबिदुका वब्नु आबिदिका वब्नु अमतिका नासियती बियदिक मादिन फिया हुक्मुक अतलुन फिया कदाउक अस्सलुका बिकुल इस्मिन हुवा लका समैत बिही नफ्सक अव अल्लमतहु अहदम मिन खल्किक अव अनज़लतहु फी किताबिक अव इस्तासरत बिही फी इल्मिल गैबि इंदक أنت جل القرآن ربي قلبي ونور صدري وجلا حزني وذهاب همي। जरा सी बेसाख्तगी देखिएगा इसके तर्जमे में, जैसे बंदा बिछता है ना, फकीर बन जाता है रब के दर पे जाके। ए अल्लाह, मैं तेरा बंदा हूँ और तेरे बंदे का बेटा हूँ और तेरी बंदी का बेटा हूँ, यानी मैं भी तेरा बंदा, मेरे माँ बाप भी तेरे बंदे, और बंदे से मुराद गुलामी। या कना बुदुआ या कनस्तीन, मेरी पेशानी तेरे हाथ में है, मुराद ये कि मेरी किस्मत तू लिखता, मेरे बारे में तेरा हुक्म जारी है, यानी मेरी साथ क्या होना है और क्या नहीं होना ये तेरे हुक्म का मुंतजर है, और मेरे बारे में तेरा फैसला अदल वाला है, मतलब ये कि तू जो मेरी तकदीर में करे बिल्कुल ठीक करता है, अदल है, मुझे तेरे किसी फैसले पे कोई एतराज़ नहीं। मैं तुझसे तेरे हर उस खास नाम के साथ सवाल करता हूँ जो तूने खुद अपना रखा है, मुराद ये है कि जो तूने अपने नाम खुद रखे हैं वही असल नाम है, हमें बताए ना बताए। फिर दूसरा, या इसे अपनी किताब में नाजिल किया है, यानी कुरान में जितने भी अल्लाह के नाम है अस्माउल हुस्ना, ये अपनी मखलूक में से किसी को सिखलाया है, तीसरी किस्म नामों की, वो मखलूक कौन सी है, वो चिड़िया हैं, वो तोते हैं, वो मेंढक हैं, वो मछलियां हैं, यानी हमें इंसानों को तो 200 नाम पता होंगे, अल्लाह के 300 पता होंगे, कुरान और हदीस को जमा कर लें 200-300 नाम तो जमा हो गए, आने वाले वक्त में और भी निकलते आ रहे हैं। लेकिन ये परिंदों के और तेरी बाकी मखलूकात को जो तेरे नाम पता है ना, मैं उनसे भी पुकारती हूँ तुझे। और चौथी किस्म नामों की, या इल्मुल गैब, में इसे अपने पास रखने को तरजीह दी है, बात ही ख़त्म कर दी, जो मालूम है हमें किसी को, दूसरी मखलूकात को वो भी, और जो तूने गैब के पर्दों में अपने नाम खुद छुपा लिए हैं, मैं सारे नामों का वास्ता और वसीला दे के तुझे पुकारता हूँ। अब बताइए अल्लाह की रहमत जोश में ना आएगी? चलिए, इतना कुछ कह दी, इतनी तारीफें कर दी, क्योंकि सूरह फातिहा में तुम सिर्फ 3 जुमले कहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमान अर्रहीम मालिक यौमिद्दीन। अच्छा अंदाज है अल्लाह की तारीफ करना। उसके बाद 1 जुमले में अपनी हस्ती, या कना बुदुआ या कनस्तईन, कि मेरे पास कुछ नहीं है, मेरा पल्ला खाली है, और आगे मांग लिया। इसी तरह यहाँ तो आपने हद कर दी अल्लाह के नामों की, तो अब मांगना भी कोई बड़ी चीज़ होगी। तो ज़रा देखिए, इतनी प्यारी तारीफों के बाद मांगा क्या, अंत जलिल कुरान अलअज़ीम रबी कलबी, क्या अल्लाह कुरान को मेरे दिल की बहार और मेरे सीने का नूर और मेरे गम को दूर करने वाला और मेरे फ़िक्र को ले जाने वाला बना दे। कभी आपने, मैंने ऐसे दुआ मांगी? और लिख लीजिए, कुरान की ये सारी खूबियाँ तब मिलती हैं जब कुरान समझ आता है, इसकी अमली कैफियत है। आप कुरान खोलिए तो सही ऐसे लगता है एक दोस्त से कॉल मिल गई, सहेली से बातचीत शुरू हो गई, माँ बेटी का दुख सुख शुरू हो गया, कुरान की आयतें ऐसे खुल खुल के सामने आती, जैसे हालात होते वैसी आयतें कट करके, जैसे वो पॉपअप होता है ना, माइंड में आती हैं, थोड़ी देर बाद याद ही नहीं रहता, ओ अच्छा मूसा को भी ये गम आया था, अच्छा यूसुफ भी आजमाए गए भाई बहनों से, अच्छा ये फलां को भी हुआ, अल्लाह के नबी को भी गम हुए, ये हुआ, बस आपके तो दूर दूसरों के याद। कहा गया, यानी अगर ये पढ़ लें तो अल्लाह ताला इसके फिक्रो गम और रंजो मलाल को दूर करके इसके बदले वुस्सत और कुशादगी अता करेगा। अब ये बात जब आपसे सुनी तो सहाबा ने कहा, अल्लाह के रसूल, क्या ये कलिमात हम सीख ना लें? तो आपने फरमाया, क्यों नहीं, हर सुनने वाले को याद कर लेने चाहिए। तो फिर आपको मुझे भी याद कर लेना चाहिए। तो अमल के नुक्ते क्या हैं कि मौत मुकर्रर वक्त पर आएगी, इसलिए डरना नहीं। मौत के बाद की आसाइशों के लिए दुनिया में मेहनत करनी है, सहाबा वाली खूबियाँ पैदा करनी है, दुआओं की कबूलियत के लिए अल्लाह ताला को इसके प्यारे नामों से पुकारना है, और मुश्किलों में सिर्फ अल्लाह ताला पर भरोसा रखना है। अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक अता फरमाए।